ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हमारा परम गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कुरुक्षेत्र तीर्थ में कहीं आए हैं और इसके बारे में अभी श्री भक्ति सिद्धांत वैभव जो एक अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक है उसका अनुवाद हम अभी सुनेंगे। Yeah, you can just, actually you can just say he came here a few times, or especially Brahmakund, and he founded the Vyas Gaura Math, and that one narration of Sridhar Maharaj is, and then you can leave it at that. Kahiba yaha hai hai, yaha par Sri Vyas Gaura Math, jisme hum kal darshan kiya hai, waha par sthapan kiya hai, और वहाँ पर श्री श्री गुरु गौरंग श्री विनोद राम जीव की सेवा स्थापन किया है और यहाँ पर उन्होंने तीन बार प्रदर्शनी आस्तिक प्रदर्शनी का प्रबंध किया है उस प्रकार प्रदर्शनी कहीं जाएगा में प्रदर्शित थे और सर्वप्रथम यहाँ पर कुरुक्षेत्र में था और दूसरी बार एक सूर्य ग्रहण के उपलक्ष जिसमें लाख लाखों तीर्थयात्री आए थे और अंतिम प्रदर्शनी इनका जीवन का समय या लीला विलास करने का समय प्राकट्य का समय सर्वप्रथम अंतिम और एक बार भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रदर्शनी का प्रबंध किया है। और कुरुक्षेत्र के बारे में इनकी एक अद्भुत कथा थी जिसके बारे में हम अभी सुनेंगे।
दूसरे भाव से वर्ण है उसके अंदर या श्रीधर महाराज इस तरह से गुरु के प्रमुख सन्यासियों से उनके द्वारा और इसी तरह से गुरु के गुरु से आगमन और गुरु के प्रचार का ही वर्णन किया गया है। या श्रीधर महाराज कुरुक्षेत्र के गोड़ियों में रखे गए थे प्रचार करने के लिए आप लोगों को।
हाँ, एक समय वे मठ रक्षक थे जो इस्कॉन में हम टेंपल प्रेसिडेंट बोलते वे मठ रक्षक थे
कुरुक्षेत्र में एक आध्यात्मिक आस्तिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बारे में सोच रहे थे और वहाँ पे वो प्रदर्शित करना चाहते थे कि इस प्रकार कृष्ण और उनके मित्र द्वारका से कुरुक्षेत्र आए और उसी समय गोपियाँ वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि सूर्य ग्रहण के समय पे वो सब ब्रह्मकुंड में स्नान के लिए जो कि कुरुक्षेत्र में पवित्र सरोवर है वहाँ पे आए थे। तो श्री प्रभुपाद यानी भक्तिदास सूर्य ठाकुर ये दिखाना चाहते थे ये लीला प्रदर्शनी के द्वारा लीला वर्णन करना चाहते थे, तो इसलिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए बहुत सारे विज्ञापन छापे गए थे, 20,000 विज्ञापन का प्रिंटिंग हुआ था छापे गए थे और उसका ये विस्तार में कुरुक्षेत्र विस्तार में वितरण हुआ था। तो यह श्रीमान बता रहे हैं कि इस विषय में भक्तिसिद्धांत सूरि ठाकुर ने उनको बताया कि जो लोग छिछले विचार वाले हैं और खोखले लोग हैं और
वो साउंड वाला को बुलाना है वो चला गया।
हरे कृष्ण। तो श्रीधर महाराज बता रहे हैं कि जो लोग छिछले विचारों वाले हैं और जो लोग खोखले हैं और बेकार हैं वही लोग वृंदावन के बारे में सोचते हैं।
What's the English? Vrindavan?
All you know that only the bogus, hollow people and men of solo thinking, shallow thinking, like Vrindavan.
Like.
Vrindavan only knows what है जो लोग छिछले विचार वाले हैं और खोखले हैं और बेकार हैं। तो भैया सीधे हमारा बताते हैं कि ये सुन के मेरे पसीने छूट गए कि अभी तक मुझे बताया गया था कि वृंदावन जो है तो आध्यात्मिक सिद्धि की चरण सीमा है और सबसे ऊंचा स्थान है और मुझे मैंने ये सुना था कि जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों के संयम कर लिया है वही वृंदावन में प्रवेश कर सकता है और कोई नहीं, और सिर्फ जो गुप्त आत्माएं हैं वही वृंदावन में प्रवेश कर सकती है और वहां पर जाके उनके पास ये अवसर उपलब्ध है कृष्ण के बारे में चर्चा करने का। तो वृंदावन जो है वो मुक्त आत्माओं के लिए है और जो लोग इंद्रियों की मांगों से मुक्त नहीं है उन लोगों को लौकिक में रहना चाहिए, ये मैंने सुना था। और जो मुक्त आत्मा है उनको वृंदावन में रहना चाहिए। अभी प्रभुपाद ये बता रहे थे कि जो लोग छिछले विचार वाले हैं वो वृंदावन को पसंद करते हैं, बट जो वास्तविक व्यक्ति है जो कि वास्तविक भजन का समझता है और वास्तविक दिव्य उसकी इच्छाएं है वो हमेशा कुरुक्षेत्र में रहने के लिए उत्सुक होगा। तो जब व्यासिदमान बताते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बड़े पेड़ से नीचे गिर गया।
हाँ, क्यों ऐसा है? सामान्यतः हम सोचते हैं कुरुक्षेत्र है वो स्थान जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए और वह भगवद गीता ज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में और भक्ति में प्रवेशी है और श्रीमद् भागवत में वो भक्ति जिसके बारे में थोड़ा सा वर्णन है भगवद गीता में भक्ति का पूरा वर्णन तो पूरा नहीं हो सकता, विस्तार वर्णन ही है। और भागवत में ब्रज धाम का वर्णन है और कृष्ण उसमें स्वयं कहते हैं कि ब्रजवासियों मेरे सबसे प्रिय भक्तों हैं। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जो वृंदावन को पसंद करते ऐसे बेकार लोग, तो यहाँ कुरुक्षेत्र यही श्रेष्ठ स्थान ही है। तो अद्भुत कथा ही है, इसका अर्थ क्या है?
तो पिया सिंगल महाराज बता रहे कि जब मैंने ये इस तरह से ठाकुर महाराज के साथ पास से सुना तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं जैसे एक बड़े झाड़ से नीचे गिर गया। तो सोचे कि ऐसा कैसे संभव है। मैं तो
मैं और थोड़ा मंतव्य करता हूँ कि इतने सारे साल हमें सुना है कि ब्रज में प्रवेश करना वो ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरीशा। तो श्रीदा महाराज का विचार था कि बहुत जन्मों के पश्चात इस स्तर तक पहुंच गए हूँ, बहुत उच्च पैर के ऊपर गया था और अभी वो सब कुछ जिसलिए हम प्रयास किया है गुरु महाराज का आदेश है, अभी गुरु महाराज बोलते हैं वो सब बेकार ही है। तो जैसे वो पैर जिसके ऊपर बहुत संघर्ष करके उठ गए हों तो वहाँ से जैसे गिल गए हों।
वो सोचे कि मैं तो एक अच्छा श्रोता हूँ और वो सोचे कि इस वाक्य का क्या तात्पर्य होगा वो जानने का मुझे प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद वो सोचे, उसके बाद भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने बताया भक्ति ठाकुर के बारे में कि जो बहुत सारे यात्राओं के बहुत सारे यात्रा के स्थान पे जाके आ रहे थे। तो उन्होंने अंत में बताया बहुत सारे यात्रा स्थलों का प्रवास करने के बाद कि मैं मेरे जीवन का अंतिम समय अंतिम दिन कुरुक्षेत्र में बिताने की इच्छा करता हूँ और मैं इच्छा करता हूँ कि वहाँ पे मैं एक छोटी सी कुटिया बनाऊँ ब्रह्म कुंड के पास और मेरे जीवन के अंत के समय अंत का समय अंत के दिन वहाँ पे गुजारूँ। और उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र जो है वो वास्तविक भजन का सही स्थान है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि सेवा जो है वो उसकी जरूरत की
तीव्रता,
सेवा जो है उसकी जरूरत की तीव्रता के आधार पे उसका महत्व नापा जाता है। जो लोग बुद्धिशाली व्यापारी है वो अपना व्यापार जब युद्ध होता है उस समय पे करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि वो भयजनक स्थिति में पैसे पानी की तरह बहाया जाता है। उनकी उस पैसे की मूल्य की पैसे के मूल्य के बारे में सोचे बिना उसको पानी की तरह बहाया जाता है जब युद्ध होता है। तो जो लोग व्यापारी है
ऐसा कहा बात नहीं है, वो पैसा पाने जैसे
तो जो लोग व्यापारी है वो सोचते हैं कि अगर युद्ध होगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। उसी तरह से जब श्रीमती राधा रानी की जरूरत सेवा की जरूरत उसकी चरण सीमा पे पहुंचती है
अब उस समय जब उनकी सेवा की जाती है तो सबसे मूल्यवान है। तो सेवा की जरूरियात के अनुसार उसका मूल्य निश्चित किया जाता है। और कुरुक्षेत्र में राधा रानी सेवा की, राधा रानी को सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि कृष्णा उनके बहुत ही समीप है, फिर भी वो कृष्ण के साथ उनकी वृंदावन लीला संभव नहीं है। जैसे एक फुटबॉल का खेल है, अगर बॉल, अगर गेंद जो है वो उसके लक्ष्य से थोड़े ही दूर रह के वापस आ जाए तो उसको एक
गोल, गोल लक्ष्य बोलते हैं, इट्स फुटबॉल गोल।
उसके गोल से, फुटबॉल के खेल में अगर गेंद उसके गोल से अगर थोड़े ही अंतर पे रह के वापस आ जाए तो उसको एक महान
हानि,
नुकसान, महान हानि समझा जाएगा। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण से लंबे विरह के बाद कुरुक्षेत्र के अंदर जब उनके भक्तों की, उनके साथ मिलाप की जो तीव्र इच्छा थी वो उसके चरम सीमा पे पहुंची है, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण एक राजा के वेश में थे और उनके साथ घनिष्ठ रूप से संबंध नहीं, घनिष्ठ रूप से वर्तन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए भक्तों की जो उनके साथ जो तीव्रता से मिलाप करने की इच्छा थी वो उसके चरम सीमा पे थी। लेकिन जो वहाँ पे जो स्थिति थी वो वृंदावन लीला के अनुसार नहीं थी, वो वृंदावन लीला को अनुमति नहीं दे रही थी वो स्थिति। तो उस समय पे राधा रानी को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उनके, उनका जो समूह है, उनका जो सखियों का समूह है, उनकी सेवा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वो स्थिति में जिसमें राधा रानी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सेवा की, अगर एक बूंद भी सेवा की जाए तो वो एक महान प्रेम का सागर को प्राप्त करने जैसा होगा। तो राधा कृष्ण की लीलाओं में दो पहलू हैं, संभोग मतलब कि दिव्य विलाप और विप्रलंब मतलब कि दिव्य विरह। तो जब राधा और कृष्ण एक दूसरे के बहुत समीप आते हैं लेकिन एक दूसरे से घनिष्ठता से मिल नहीं सकते, तो उस समय पे जो सेवा की जाती है वो सेवक के लिए सबसे महान
लाभकारी
होगा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि मैं एक कुटिया बनाऊंगा ब्रह्मकुंड के तट पर कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे मैं ऐसी सेवा के बारे में, दिव्य युगल की ऐसी सेवा के बारे में हमेशा चिंतन कर पाऊँ और मैं वो स्थिति प्राप्त कर पाऊँ जहाँ पे सेवा का जो विस्तार है वो सबसे ऊंचा है। और क्योंकि वो स्थिति में मैं रहूँगा तो मेरा कभी भी ये भौतिक धरातल में वापस आने का कोई संभावना नहीं है।
उसी स्थिति में थोड़ी सी सेवा से बहुत बड़ा लाभ होता है, लेकिन उसी स्थिति में सेवा करना बहुत कठिन ही है। एक और मंतव्य है भक्ति स्तंभ ठाकुर ने, उन्होंने सब स्थितियों में उसका गहरा सूक्ष्म संबंध श्री श्री राधा गौर और राधा कृष्ण की लीला में उन्होंने सब देखते थे और इस प्रकार विश्लेषण किया है। एक और मंतव्य उन्होंने किया कन्याकुमारी में, पूरा दक्षिण भारत का दक्षिण प्रांत में कि ये कन्याकुमारी दुर्गा माता का एक रूप है, परंतु सिद्धांत सरस्वती की दिव्या दृष्टि से वो ब्रज की कन्या है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र है बड़ी गोपियां, विवाहित गोपियां का स्थान है, राधा और अष्टशाखी सब साखियों का स्थान है, और इस कन्याकुमारी छोटी अविवाहित गोपियां का स्थान है। तो उस भक्ति सिद्धांत भाई भाव में प्राय हर एक पन्न में इस प्रकार की अद्भुत कथा है और थोड़ी सी अद्भुत कथा सुन के हम और भी अद्भुत कथा चर्चा करेंगे, वो अद्भुत कथा जो भगवद गीता में है। कभी कभी हम ऐसे सर्वोच्च कथा सुनने से हम लक्ष्य कर सकते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है, और पहले हमारा संबंध क्या है श्री कृष्ण के साथ, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए भगवद गीता यथारूप के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है कि वे पुरुषोत्तम अर्थात सभी पुरुषों के ऊपर है, वे श्रेष्ठ पुरुष ही है। इस विषय भगवद गीता का 15 नंबर अध्याय का विषय है, उसका नाम है पुरुषोत्तम योग। उसमें श्री कृष्ण कहते योमामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मम सर्वभावेन भारत, कि जो व्यक्ति संदेह रहित होकर मतलब पूरा निष्ठावान होने से जानते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं भगवान हूँ, वो व्यक्ति सर्वविद ही है, सब कुछ जानते हैं, और इसलिए सभी प्रकार से मेरी सेवा करते हैं। तो ऐसे उसके पहले भी भगवान ने कहा अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तित इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। यदि कोई जानते है कि कृष्ण भगवान ही है तो वो व्यक्ति पूरा भाव से सब कुछ समर्पण करके श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो यौमामेव समूढ़ो जो जानते कि कृष्ण पुरुषोत्तम, वो इस प्रकार श्री कृष्ण का भजन करते हैं और सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हैं मतलब वो जीव जो सीमित है, जिनकी सीमित बुद्धि है, जो सब कुछ जानते हैं जो उसका जानने की आवश्यकता है। हम भगवान जैसे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, तो हमारी बुद्धि की सीमा में जो हम समझ सकते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से हम समझ सकते हैं। यदि हम स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है, इस विषय के बारे में श्रील प्रभुपाद का ही बाबा है कि भगवान महान ही है, भगवान सर्वशक्तिमान ही है। ऐसे कहना पूर्ण नहीं है। लोग जो ऐसे बोलते हैं वो अच्छा है नास्तिकों से, नास्तिक जो है स्वीकार नहीं करते कि सर्वशक्तिमान भगवान ही है। परंतु केवल कहना कि भगवान सर्वशक्तिमान है वो पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है इसको समझना चाहिए। वो ज्ञान इस भगवद गीता में है। और कि एक व्यक्ति वो ज्ञान संपन्न है, यही परीक्षा है कि वो व्यक्ति वो भगवान की पूरी सेवा करेंगे। वो म्यूजिक का आवाज आते जो राम शरण प्रभु आप जरा सा वहाँ जाके जो रेडियो बजाते बताए उसको बंद करना। आप वृद्ध है आशा है आपकी बात सुनेंगे। तो ये भगवद गीता पाठ करने का फल ही है कि कैसे भगवान भगवान है, कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो ज्ञान इस भगवद गीता से हम प्राप्त हो सकते हैं। और वो ज्ञान प्राप्ति का फल है कि हम पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा करेंगे। और भगवान भगवान हम बोलते कृष्ण की सेवा करेंगे। भगवान कृष्ण ही है और कृष्ण भगवान ही है। और कि कृष्ण भगवान है वो पूरा सत्य ज्ञान ही है। और इस कुरुक्षेत्र में वो भगवान भगवद गीता बताएं। और इस कुरुक्षेत्र में भी व्रजवासियों जो कृष्ण को कृष्ण जैसे मानते कि कृष्ण भगवान है तो ऐसे नहीं मानते थे कि कृष्ण तो कृष्ण ही है। यदि भगवान हो तो ठीक है लेकिन वो हमारे कृष्ण ही है। तो वो लीला का सारांश का थोड़ा सा वर्णन हम अभी कुछ सुनने हैं। तो क्यों हम उत्साही होंगे भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और क्यों हम उसको ज्ञान बोलते हैं? विशेषकर पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि ऐसे पोशाक पहनना असाधारण ही है इस देश में और वहाँ पर और भी असाधारण ही है। और इस पोशाक से हम घोषणा करते हैं कि हम धार्मिक ही है। तो कभी कभी पाश्चात्य देशों में जब मैं वहाँ जाता हूँ लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप क्या विश्वास करते हैं? क्योंकि सामान्यतः कि धर्म एक प्रकार का विश्वास है यही विश्वास प्रचलित है मानव समाज में। तो कुछ लोग क्रिश्चियन है तो जीसस में विश्वास करते हैं और कुछ लोग मुस्लिम है और अल्लाह मोहम्मद में विश्वास करते हैं और कुछ लोग बुद्धिस्ट है तो बुद्ध में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग हिंदू है और क्या विश्वास करते हैं, बोलना कठिन। तो इस भगवद गीता ज्ञान ही है, विश्वास का विषय ही है, परंतु उसमें विश्वास होने चाहिए। अलग अलग मत होते हैं और हम किसी भी एक मत में हमारा विश्वास रख सकते हैं, परंतु ज्ञान जो है वो विश्वास से पृथक ही है। तो इस प्रकार ज्ञान ही है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार दुखमय है, तो वो विश्वास का विषय नहीं है। यदि हम विश्वास करते हैं या अथवा अविश्वास करते हैं तो इस भौतिक जगत दुखमय ही है, तो यही ज्ञान है। और कि कृष्ण भगवान है तो शायद लोग कहेंगे कि वो तो विश्वास का विषय है, नहीं वो भी ज्ञान ही है, परंतु वो ज्ञान सूक्ष्म है और उसको समझने के लिए हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की पद्धति ग्रहण करना चाहिए। जैसे भौतिक ज्ञान में, भौतिक साइंस में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन ही है, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं तो मुझ अगर भगवान हो तो मुझको देखाओ, यदि मुझको नहीं देखते तो वो ही प्रमाण है कि भगवान नहीं है। तो हम ऐसे नास्तिक लोग को बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चीज है कि नहीं तो मुझको देखाओ, यदि मुझको नहीं दिखाते तो वो ही प्रमाण है कि इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व नहीं है, खाली तुम्हारा अंधविश्वास ही है कि इलेक्ट्रॉन जैसे चीज है। तो यदि हम ऐसे कहेंगे तो वो व्यक्ति कहेंगे तो नहीं नहीं वो प्रमाण ही है, तो मुझको देखा, यदि नहीं नहीं तो उसको समझने के लिए तो आपको साइंस पढ़ना चाहिए। और वो सब थियोरी धीरे धीरे समझ के तो यही विषय कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चीज का अस्तित्व है आप भी समझ सकेंगे। तो अभी अभी मुझको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएगा, नहीं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए कम से कम 15 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो हम भी वैसे बोलते हैं कि हम भगवान आपको हम भगवान दिखा सकते, लेकिन समझने के लिए यथार्थ पद्धति के अनुसार प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और एक दिन में देखना संभव नहीं होगा। तो कैसे हम भगवान को देख सकते, जैसे अर्जुन और कृष्ण एक साथ में थे, अर्जुन के समक्ष श्री कृष्ण भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो हम भी वैसे अवसर मिल सकते यदि हम अर्जुन जैसे सेवा भावी होते, समर्पित सेवा भाव से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं आत्मा को हमको दिखाना। अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवत ग्राह्यम इंद्र है सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। तो ज्ञान है भगवद्गीता में, वो जो श्री कृष्ण कहते हैं तो हमें थोड़ा ठंड दिमाग से ये सब विचार करना चाहिए। दुखालयम इस भौतिक संसार दुखमय है, अशाश्वतम सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है, तो वो तो सही है और कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंत अंत कौंत नथेषु रमते बुद्धः, कि वो प्रयास इंद्रिय तृप्ति से सुखी होना उस प्रयास में बुद्धिमान लोग भाग नहीं लेते क्योंकि वे जानते हैं कि वो सुख प्राप्ति का प्रयास में केवल दुख मिलता है। तो हम अपने अनुभूति से समझ सकते हैं कि यही सब ज्ञान ही है और सब कुछ जो श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान ही है, क्योंकि अनादिकाल से सब महान ऋषि मुनि साधु जन इस ज्ञान स्वीकार करते हैं। तो कि इस भौतिक संसार दुग्मय है वो सही है, तो गीता में श्री कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि परस्थस्मातु भावनो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, कि इस भौतिक संसार अशाश्वत है, महाप्रलय होगा जिसमें सब कुछ जो है इस जगत में सब कुछ का पूरा नाश होगा और सब कुछ श्री महाविष्णु का महान सूर्य में प्रवेश करेगा। तो इस भौतिक संसार की गति यही है, परंतु इस भौतिक संसार के परे एक और जगत है, आध्यात्मिक जगत ही है जिसका सृष्टि प्रलय तो कुछ नहीं है, वो सुखालयम शाश्वतम ही है। वहाँ पर सनातन परमानंद का अनुभव होते है और वो परमानंद का आस्पद है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो इसलिए यही कथा सुन के हमें उत्साही होना चाहिए कि मैं अभी इस भौतिक दुखमय संसार में हूँ, यहाँ रहने से मैं आनंद नहीं मिलता, परंतु दूसरा जगत है जिसमें केवल आनंद होते हैं, तो वहाँ जाने के लिए हमें उत्साही होना चाहिए। वो उत्साह बुद्धिमान ही है। यदि हम संतुष्ट हैं इस जगत में जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते बार बार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, तो इस भौतिक संसार में संतुष्ट होना मूर्खता ही है। तो बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होना और परम गति आनंदमय शाश्वत धाम प्राप्त करने के लिए। तो उसके बारे में श्री कृष्ण हमको एक बहुत सहज उपाय प्रदान किया है। यं यं वापि स्मरं भावं त्यक्त्वा अन्ते कलेवरं तं तमेवैते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, ये भौतिक प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जीवन में जिस विषय पर हमारा ध्यान होते हैं अंतिम काल में मृत्यु का समय, उस ध्यान के अनुसार हमारा अगला जन्म होते हैं। तो इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए कि अंतिम काल में हम केवल श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावं त्यज्यन्ते नाच संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त, जो भक्त तो नहीं बोले परंतु केवल भक्त जन, तो वैसे अभ्यास करते जिससे वे अंतिम काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे, तो जो लोग मुझको स्मरण करके शरीर त्याग करते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो ये सहज उपाय है इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, और विशेषकर उस अध्याय में परम गति प्राप्ति का वर्णन है, भगवद्गीता का 8वां अध्याय में, और विशेषकर उस अध्याय के तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद बार बार पूरा महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिखते हैं। एक तात्पर्य में दो तीन बार श्रील प्रभुपाद पूरा हरे कृष्ण मंत्र लिखते हैं, और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने बहुत जोर के हमको प्रेरित करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जप की साधना करना, अभ्यास करना, जिससे हम मृत्यु का समय प्रस्तुत होंगे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए। तो भगवद गीता में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति का वर्णन है, ये चार पंथ का वर्णन। हम ऐसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, और बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति तो चार मार्ग है, और यथारुचि हम किसी भी पंथ चुना सकते हैं और सभी मार्ग एक ही है। परंतु यदि हम अर्जुन जैसे श्री कृष्ण से श्रवण किए थे, यदि हम उस प्रकार भगवद गीता ज्ञान सुनेंगे, यदि हम श्रील प्रभुपाद का माध्यम से भगवद गीता यथारूप सुनेंगे, तो कि सब मार्ग एक ही है, तो इस भूल सिद्धांत हम ग्रहण नहीं करेंगे कि भक्ति श्रेष्ठ है और सब अन्य मार्गों दुर्बल अपूर्ण ही है। वो ही भगवद गीता का सिद्धांत है। और श्री चैतन्य चरितामृत में, सनातन शिक्षा में, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को सिखाए कि भक्ति तो वास्तविक मार्ग ही है, और श्रीमद् भागवत में कही प्रसिद्ध श्लोक है, श्रेयश्रुति भक्ति मुदस्यते विभो इत्यादि। ठीक है, तो गीता में श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और योग के बारे में थोड़ा, मतलब भगवद गीता तो खाली 700 श्लोक है, और उसमें श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान और योग थोड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। किस लिए? तो व्याख्या करने के लिए कि कि कर्म ज्ञान योग से जीव का वास्तविक कल्याण नहीं होते, केवल भक्ति से होते हैं। तो कर्म के बारे में सबसे प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, मा फलेषु कदाचन, लेकिन कि वो फल जो आते कर्म से तो उस से आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसी बात को ये मूढ़ लोग को विशेष महत्व देते। तो अद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करना, तो निष्काम कर्म करना श्री कृष्ण का अनुमोदन ही है, परंतु वो भी परम नहीं है। तो कर्म पुण्य कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है और आसानी से मिलते, कांक्षांत कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मज। तो ऐसे श्री कृष्ण कहते सिद्धिर भवति कर्मज, सिद्धि प्राप्ति होती है कर्म से, लेकिन किस प्रकार की सिद्धि? कांक्षांत कर्म नाम सिद्धि क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब तुरंत ही वो कर्म सिद्धि मिलते हैं देव देवियों की उपासना करने से। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते तो कर्म करने से कर्म सिद्धि आसानी से तुरंत ही प्राप्त होती है, परंतु उसके बारे में श्री कृष्ण और भी कहते काम स्थाई स्थाय हृत ज्ञान प्रपद्यंते देवता हा, जिनकी बुद्धि नष्ट है जो भौतिक कामनाएं की पूर्ति करने के लिए देव देवियों की उपासना करते हैं, वो लोग तो नष्ट बुद्धि है। हृत ज्ञान, हृत ज्ञान का मतलब नष्ट बुद्धि, क्यों? क्योंकि अंतवत्थु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधस्, अल्पमेधस का मतलब अल्प बुद्धि। तो ऐसे लोग देव देवियों की उपासना करते हैं उस प्रकार फल प्राप्त करने के लिए जो अस्थाई ही है। त्रैविद्यामां सोमपा भूतपापा यज्ञैरिष्ट्व स्वार्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। त्रैविद्या अर्थात वो विद्या जो तीन वेद में है, ऋक् यज्ञ और साम, वो विद्या है यज्ञ बनाने के लिए, और जो उस प्रकार पुण्यशाली लोग यज्ञ बनाते सोमरस पीते हैं और वो यज्ञ करना का फल मिलते स्वर्ग वर्ष करना, तो यही उनकी कर्म सिद्धि है। जो देवताओं की देव पूजा करते यजंत यान्ति देव प्रथा देवान, वे भी देवलोक जाते और देव का रूप मिलते, तो वो ही कर्म सिद्धि है। लेकिन कृष्ण कहते अंतवत्थु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां, वो फल अस्थाई है, स्वर्ग वास अस्थाई है, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशाल, वो सुख जो है स्वर्ग लोक में वो विशाल सुख ही है। विशाल सुख कैसे विशाल है? इस पृथ्वी में वो इंद्रिय सुख जो है वो ही तुच्छ है। वो देवलोक में, वो स्वर्ग लोक में वो इंद्रिय सुख जो प्राप्त होते हैं, परंतु सुख क्या है इस भौतिक संसार में? सब दुख ही है। तो जैसे एक व्यक्ति जेल में है और उसका बंधन है लोहा का चैन से, और दूसरा व्यक्ति सोना का चैन से, ओ बोलते है हाँ मैं तो तुम लोहा का चैन में हो और मैं सोना का चैन में हूं, तो दोनों प्रिजनर ही है, बंदी है। तो इस प्रकार स्वर्ग में वो सुख जो है वो कृष्ण प्रेम सुख से कुछ नहीं है, तुच्छ, बहुत ही तुच्छ है, और वो भी अस्थाई है। चैतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालं क्षीणै पुण्यै मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। तो इस प्रकार लोग जो पुण्य कर्म करते, यज्ञ करते, स्वर्ग जाते, तो वो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग में रहते, कुछ समय के बाद इस पृथ्वी में वापस आते, फिर ऊपर जाते यज्ञ करने से, फिर यहाँ वापस आते, फिर ऊपर जाते। तो इस प्रकार गतागति आना जाना होते हैं। और यदि इस कर्म मार्ग में यदि कुछ भी छूटी हो तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे करते अप डाउन अप डाउन अप डाउन 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 होते। जैसे नृग महाराज महान पुण्यशाली राजा थे, और एक बार इनका ब्राह्मणों को दान देना में एक छूटी थी, तो नृग महाराज का दोष नहीं था, तो फिर भी उस दोष से वो नारक ईश्वर्य प्राप्त किया हो, क्या बोलते गिर गिर लिजर्ड जैसे शूर्य मिला था। भक्ति में ऐसा नहीं होते। यदि हम कुछ छूटी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्त के रक्षक है, वो छूटी ग्रहण नहीं करते। स्वप्नमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो इस प्रकार चैतन्य चरितामृत में और श्रीमद् भागवत में और भी भक्ति ग्रंथ में ये विचार है कि कैसे कर्म ज्ञान योग ही है, परंतु भक्ति मार्ग सृष्टि है। अपि चैत् सुदूर आचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा। तो जो भक्ति में कुछ छूटी या बड़ी छूटी भी करते हैं, यदि वो व्यक्ति का पूरा उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, तो वो दोष से भगवान स्वयं वो भक्त बचाते हैं। तो कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग, ये तीनों मार्ग में ऐसा तो नहीं है। तो इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। और अभी दूसरे प्रकार से भक्ति की योजना है प्रसाद सेवा, वो भी भक्ति ही है। प्रसाद सेवा तो खाना तो नहीं, प्रसाद सेवा ही है। तो भक्ति मार्ग इतना बढ़िया है कि खाने पीने सोने में भी भक्ति साधना होती है। खाए थे सोए थे जोथा थोथा नाम लोय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम